आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का 14वां पाठ पढ़ेंगे, अकबरी लोटा। इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। ये एक हास्य व्यंग से परिपूर्ण कहानी है। इसमें हंसी भी आएगी आपको और व्यंग भी देखने को मिलेगा। व्यंग अद्भुत तरीके से इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें लाला झाऊलाल हैं, जब उनकी पत्नी उनसे 250 रुपये मांगती है तो उसके बाद क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, उनका वर्णन इस कहानी में है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और हास्य व्यंग का मजा लेते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। ये कहानी लाला झाऊलाल की है। झाऊलाल के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है और ठठेरी बाजार में उनका मकान है। नीचे की दुकानों को उन्होंने किराए पे उठा रखा है, जिससे मासिक किराया कम से कम 100 रुपये आ जाते हैं। अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा पहनते ओढ़ते हैं, लेकिन 250 रुपये एक साथ उन्होंने कभी नहीं देखे थे। एक साथ 250 रुपये देखना आम बात उनके लिए नहीं थी, ये उनके लिए थोड़ी सी बड़ी बात थी। तो 250 रुपये एक साथ जुटाना या उनके पास होना एक बड़ी बात है उनके लिए। आगे पढ़ेंगे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। इसलिए जब एक दिन उनकी पत्नी ने अचानक से कहा कि उन्हें 250 रुपये चाहिए, तो झाऊलाल एकदम से उनका चेहरा जो है उतर जाता है। पत्नी उनको देखकर समझ जाती हैं, उनके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ी हैं उसे देखकर समझ जाती हैं। तो वो कहती है कि अच्छा, डरने की बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम नहीं दे सकते हो, तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। नेक्स्ट पेज। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लाला झाऊलाल ये सुनकर भड़क जाते हैं, जब उनकी पत्नी ने कहा कि वो अपने भाई से पैसे ले लेंगी। तो वो कहते हैं कि अरे हाँ, 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मुझसे ही ले लेना। लेकिन उनकी पत्नी उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि उन्हें इसी जिंदगी में चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ हाँ, इसी सप्ताह में ले लेना। तो फिर उनकी पत्नी जवाब देती है और कहती है कि सप्ताह से आपका मतलब क्या है, 7 दिन या 7 साल? तो इस पर लाला झाऊलाल रौब झाड़ते हुए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यों ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उनकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को 7वें दिन 250 रुपये देने का वादा तो कर दिया, लेकिन 4 दिन तो ऐसे ही बीत गए और पैसों का कोई जुगाड़ नहीं हुआ। फिर उन्हें चिंता होने लगी। बात उनकी प्रतिष्ठा का था, उनकी सम्मान का था, अपने किए हुए वादे का था। आखिर घर में ही क्या इज्जत रह जाएगी अगर वो पत्नी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर पहली बार उनकी पत्नी ने मुंह खोलकर कुछ पैसे मांगे थे, इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह की मांग नहीं करी थी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों कथाएं लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को सुनाई थी, अब जब एक काम पड़ा है और वो भी नहीं कर पाएंगे तो लाला झाऊलाल की अपने घर में अपनी पत्नी के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। ये सोचकर वो परेशान हो रहे थे कि अब कैसे, क्या करूं, अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। आगे। खैर, एक दिन और बीता। पांचवे दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्स थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। एक दिन ऐसे ही और बीत जाता है और पांचवे दिन लाला झाऊलाल घबरा कर पंडित बिलवासी मिश्र से मिलते हैं और उन्हें अपनी कहानी को सुनाते हैं कि उन्हें क्या जरूरत है। लेकिन उस समय वक्त कुछ ऐसा खराब था कि बिलवासी जी के पास भी कुछ नहीं था, वो भी उस समय पूरे खाली थे। तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं किसी और से मांग कर लेके आने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो फिर मैं कल शाम को तुम्हारे ही मकान पर तुमसे मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह हंसी कैसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज वही शाम थी जब पंडित बिलवासी मिश्र ने पैसों का इंतजाम करके लाने के लिए कहा था, हफ्ते का अंतिम दिन। कल अगर या तो 250 रुपए दे देने हैं या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धो देने हैं, यानी जो बड़ी बड़ी कहानियां उन्होंने सुनाई थी वो सब छूटी साबित हो जाएंगी। ये तो सच है कि अगर पैसे नहीं भी मिले और उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे नहीं दिए तो भी वो उन्हें कोई देश निकाला नहीं दे देंगी या फिर उम्र कैद की सजा नहीं दे देंगी, बस थोड़ा सा शायद हंस देंगी। लेकिन वो हंसी कैसी होगी? व्यंगात्मक हंसी, कि वादे इतने बड़े बड़े, बातें इतनी बड़ी बड़ी और काम कुछ भी नहीं। तो इस तरह की हंसी के बारे में सोच कर ही झाऊलाल जो है वो घबरा जाते हैं। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र ने आने के लिए कहा था। लाला झाऊलाल सोचता है कि अगर वो नहीं आए तो, और अगर आए लेकिन वो पैसों का प्रबंध ना कर सके, पैसों का कोई जुगाड़ नहीं हुआ तो वे क्या करेंगे। नेक्स्ट पेज 85। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। था तो नया, साल दो साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। लाला झाऊलाल इसी परेशानी में उधेड़ बुन में छत पर टहल रहे थे, तभी उन्हें लगता है कि उन्हें प्यास लगी है, तो वो नौकर को आवाज देते हैं। नौकर नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ही पानी लेकर आती है। वो पानी लाती है, लेकिन पानी लोटे में लेकर आती है और गिलास लाना भूल जाती है, और लोटा भी ऐसा लेकर आती है जो अपनी शक्ल की वजह से लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोटा इतना ज्यादा पुराना नहीं था, साल दो साल पहले ही बना होगा, लेकिन उसकी जो गढ़न थी, जिस डिजाइन का वो था, ऐसा लगता था जैसे इस लोटे का बाप डमरू रहा होगा और माँ इसकी चिलम होगी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झाऊलाल बिना कुछ बोले ही लोटा ले लेते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी का अदब करते थे और करना भी चाहिए, क्योंकि सभ्यता तो यही कहती है। अब जो अपनी पत्नी का भी सम्मान ना करे वो पति कैसा। और फिर वो ये भी सोच रहे थे कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, अगर इसके बारे में कुछ बोला तो खाना शायद फिर बाल्टी में मिलेगा, फिर क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि लोटे को ही बर्दाश्त कर लेते हैं और इसी में पानी पी लेते हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल गुस्से से ही अपना पानी पीते रहते हैं, लेकिन उस समय वो छत की बिल्कुल मुंडेर पर खड़े थे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी पीने के बारे में कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पता नहीं उन्होंने ये नियम कभी बनाया या नहीं बनाया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी मत पियो। लगता है वो लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ कहना भूल गए हैं और इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए था और कुछ नियम बना देना चाहिए था। लाला झाऊलाल मुश्किल से एक दो घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा यह सारी शक्ति ही इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊलाल पानी पी ही रहे थे कि अचानक से उनका हाथ किसी तरह हिल जाता है और वो लोटा छूट कर नीचे गिर जाता है। लोटा सीधे बहुत तेज गति के साथ नीचे गली में जाता है। वो जिस गति से नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे उल्का को भी उसने हरा दिया है। उससे भी तेज गति से जाता हुआ वो आंखों से ओझल हो जाता है। कहते हैं कि किसी जमाने में न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आकर्षण शक्ति की खोज की थी कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है, वो अपनी तरफ चीजों को खींचती है। तो ये कहना नहीं होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। मतलब उसे देखकर लग ही रहा था कि हाँ पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। वो इतनी तेज गति से नीचे गिरा कि बस देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजने से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। ये देखकर लाला एकदम सुन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो अगर उन्हें काटा जाए तो उनके बदन में खून ही ना हो, क्योंकि ऐसी चलती फिरती गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना कोई मजाक नहीं है। और फिर ये लोटा न जाने किसके ऊपर गिरा होगा, पता नहीं किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर ये लोटा पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख सिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था जैसा झाऊलाल सोच रहे थे। गली में जोर से हल्ला होने लगता है। लाला झाऊलाल जब तक नीचे दौड़कर जाते हैं तब तक उनके आंगन में एक भारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में जो प्रधान पात्र है, जो मेन है, वो एक अंग्रेज है और वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है। वो एक हाथ से अपने पैर को सहला रहा है और दूसरे पैर पर नाच रहा है। मतलब नाच नहीं रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। और उसी के हाथ में वो अपराधी लोटे को देखते हैं, मतलब उसी के हाथ में वो लोटा है। तो झाऊलाल जी तुरंत स्थिति को समझ जाते हैं कि क्या हुआ होगा। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहां टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। नीचे गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साहिबान से टकरा गया, जो किसी कमरे के आगे जो छज्जा बनाया जाता है उससे टकराया। और फिर उसके बाद उस दुकान पर खड़े हुए अंग्रेज को उसने पूरी तरह से नहला दिया, सभी अंगों को भिगाया और फिर उसी के बूट पर जूते पर जाके गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। और जब उस अंग्रेज को पता चलता है कि उस लोटे के मालिक झाऊलाल हैं, तब उसने सिर्फ एक काम किया, मुंह खोला और खुला छोड़ दिया। वो लाला झाऊलाल को गालियां दे रहा था। लाला झाऊलाल को आज ही पता चला कि अंग्रेजी भाषा में इतनी सारी गालियां हैं, इतना बड़ा प्रकांड कोष है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। उसी वक्त पंडित बिलवासी भी आ जाते हैं और आते ही उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अंग्रेज को छोड़कर बाकी जितने लोग आंगन में थे उन सबको बाहर निकाल दिया और फिर एक कुर्सी रखकर अंग्रेज से कहते हैं कि आपके पैर में चोट लग गई होगी, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। अंग्रेज बिलवासी को धन्यवाद कहता है और पूछता है कि क्या आप इसको जानते हैं, लाला झाऊलाल की तरफ इशारा करके पूछते हैं। बिलवासी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो ऐसे आम चलते राह चलतों पर लोटों से वार करता है। नेक्स्ट पेज 87। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस न्यूलैटिक, यानी ये एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अंग्रेज कहता है कि मेरी नजर में यह आदमी एक खतरनाक पागल है, तो बिलवासी कहते कि नहीं नहीं, मेरी नजर में तो ये एक खतरनाक मुजरिम है। इस समय अगर लाला झाऊलाल के पास ये ताकत होती कि वो आंखों से देखने के बजाय किसी को खा भी सकते तो वो बिलवासी जी को आंखों से ही खा जाते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बिलवासी कर क्या रहा है, उन्हीं के अपोजिट क्यों जा रहा है, उन्हीं के विरुद्ध में बातें क्यों बोल रहा है। आगे साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अंग्रेज बिलवासी जी से पूछता है कि फिर अब क्या करना चाहिए, तो बिलवासी कहते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट कर दो, इसे जेल भेज दो। तो वो पूछता है अंग्रेज की पुलिस स्टेशन कहाँ है। बिलवासी कहते हैं ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। अंग्रेज चलने के लिए तैयार हो जाता है तभी बिलवासी जी कहते हैं कि अच्छा चलते हैं, पहले आप मुझे जरा थोड़ी सी इजाजत दे, मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ। और झाऊलाल से कहते हैं कि मैं इसके 50 रुपए तक दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल कुछ नहीं कहते, लेकिन अंग्रेज ही पूछने लगता है कि इस बेकार लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं। तो बिलवासी कहते हैं कि आप इस लोटे को बेकार बता रहे हैं, रद्दी बता रहे हैं। आश्चर्य की बात है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। कहते हैं अच्छा बात क्या है, कुछ बताइए तो सही। कहते हैं कि बिलवासी कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में दुनिया भर के म्यूजियम है, जैसे दुनिया भर के सारे म्यूजियम जिस अकबरी लोटे को ढूंढ रहे हैं, ये वही अकबरी लोटा है। तो अंग्रेज कहता है यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। 1957 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। बिलवासी कहते हैं कि हाँ, ये 16वीं शताब्दी की बात है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था, तब उसे एक ब्राह्मण ने एक लोटे से पानी पिलाया था। इसी लोटे से हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण से इस लोटे को ले लिया था और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे उसे दिए थे। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसीलिए इस लोटे का नाम अकबरी लोटा था। 1957 तक ये लोटा शाही घराने में था, पर इसके बाद वहां से ये लापता हो गया, गायब हो गया, कहां गया पता नहीं किसी को। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है और पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आ गया है। अगर म्यूजियम वालों को पता चल जाए तो वो इस लोटे के अच्छे दाम देकर इस लोटे को इस आदमी से ले जाएंगे। पेज नंबर 89। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? ये कहानी सुनने के बाद अंग्रेज की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बिलवासी जी से पूछता है कि फिर आप इस लोटे का क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी कहते हैं कि मुझे ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। कुछ लोगों को शौक होता है, वो पुरानी चीजें, बहुत पुरानी चीजों को इकट्ठा करते हैं, ये उनका शौक होता है। तो अंग्रेज कहता है कि मुझे भी ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था तब भी मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। बिलवासी कहते हैं, कुछ भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। तो वो कहते हैं, अंग्रेज कहता है कि अच्छा, ऐसे कैसे, आप कैसे खरीदेंगे? इस लोटे पर तो मेरा हक है। तो कहते हैं, हक है? हाँ, बताइए, इस लोटे ने स्नान किसको कराया, आपको या मुझे? किसके पैरों पर गिरा, आपके या मेरे? इसने अंगूठा किसका फोड़ा, मेरा या आपका? तो बिलवासी कहते हैं कि हाँ, आपका ही। तो कहते हैं कि फिर इसीलिए इस लोटे को खरीदने का हक मेरा है। तो बिलवासी कहता है, ये सब तो बकवास है, दाम लगाइए, जो अच्छे पैसे देगा, ज्यादा पैसे देगा, वो इस लोटे को ले जाएगा। अंग्रेज कहता, ठीक है, आप 50 रुपए लगा रहे हैं तो मैं 100 रुपए देता हूँ। बिलवासी 150 करते हैं, अंग्रेज 200, और बिलवासी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं 250 देता हूँ। और वो ये कहकर 250 रुपए झाऊलाल के आगे फेंक देते हैं। साहब, अंग्रेज साहब को भी ताव आ जाता है एकदम से, और 250 की जगह 500 रुपए निकाल देते हैं। कहते हैं कि मैं अब इसके 500 रुपए दूंगा, अब बताइए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। बिलवासी जी को अफसोस होता है और वो जो फेंके हुए पैसे थे उनको उठाने लगते हैं, और इतने दुख के साथ उठाते हैं मानो जैसे अपनी खुशियों की लाश उठा रहे हों, अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। और अंग्रेज की तरफ देखकर कहते हैं कि लोटा आपका हुआ, आप ले जाइए, मेरे पास 250 से ज्यादा पैसे नहीं है। नेक्स्ट पेज 90। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? ये सुनते ही कि लोटा उनका हो गया है, अंग्रेज बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं खुश हंसता हुआ अपने देश जाऊंगा, क्योंकि मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं। तो पूछते हैं, बिलवासी पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है? कहता है कि मेजर डगलस मेरा पड़ोसी है, उन्हें भी पुरानी मेरी और उनकी पुरानी चीजों को इकट्ठा करने की होड़ लगी रहती है कि कौन अच्छी चीज लेकर आएगा, कौन कितनी पुरानी चीज लेकर आएगा। पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो कहते हैं, जहांगीरी अंडा? मैं हाँ, मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से सिर्फ वो ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। तो बिलवासी पूछते हैं, लेकिन जहांगीरी अंडा है क्या चीज? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। तो अंग्रेज जहांगीरी अंडा की कहानी सुनाता है और वो कहता है कि आपको पता है कि नूरजहां और जहांगीर का प्रेम कैसे हुआ था? जब जहांगीर पूछते हैं कि तुमने मेरा एक कबूतर कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां दूसरे कबूतर को भी उड़ा देती है और उड़ाकर बताती है कि देखो ऐसे उड़ जाने दिया। तो उसके इस भोलेपन पर जहांगीर जो है वो निछावर हो गए और उन्हें उनसे प्यार हो गया। उस वक्त के बाद से ही जहांगीर ने अपने आप को पूरी तरह से नूरजहां को सौंप दिया था। तो यही कबूतर का एहसान वो कभी नहीं भूले, इसीलिए उन्होंने उसके एक अंडे को बड़े प्यार से संभाल कर सहेज कर रखा। वो बिल्लौर की एक हांडी में उसके सामने हमेशा टंगा रहता था। वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी अंडे को मेजर डगलस पिछले साल एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीद कर ले गए थे। यह बात हाँ, पर आप मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। बिलवासी कहते हैं कि अच्छा, तो ये बात है। तो अंग्रेज कहता है हाँ, लेकिन अब डगलस मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो अकबरी लोटा है वो उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, क्योंकि अंडा जो है वो जहांगीर के समय का है और लोटा जो है वो अकबर के समय का है। तो बिलवासी कहते हैं, इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई धाड़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अंग्रेज 500 रुपए लाला झाऊलाल को देकर चला जाता है और लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता है। मारे प्रसन्नता के ऐसा लगता है जैसे उनकी दाढ़ी का एक एक बाल जो है वो खुशी में लहरा रहा है। वो बिलवासी से पूछते हैं कि 250 रुपए तुम घर से लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारे पास तो थे ही नहीं। तो बिलवासी कहता है कि ये जो भेद है, ये जो रहस्य है, ये मेरे सिवाय सिर्फ मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछिए, मैं नहीं बताने वाला। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए।
बिलवासी जी जाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि झाऊलाल कहते हैं कि अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो मुझे आपसे 2 घंटे तक काम है। बिलवासी आश्चर्य के साथ कहते हैं 2 घंटे तक? तो कहते हैं हाँ, अभी तो मैं आपकी पीठ ठोक कर आपको शाबाशी दूंगा, 1 घंटा तो उसी में लग जाएगा, और फिर गले लगाकर आपको धन्यवाद भी तो देना है, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। बिलवासी कहते हैं कि अच्छा, पहले अपने पैसे गिनकर सही से रख लो। रुपया अगर अपना हो तो उसे गिनना और उसे संभाल कर रखना एक बहुत ही मनमोहक कार्य लगता है, जिसे कर कर मनुष्य को खुशी मिलती है। लाला झाऊलाल ने अपना ये काम पूरा किया और फिर जब ऊपर देखा तो बिलवासी जी वहां से जा चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई। उस रात को बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई, वो बस जागे हुए ही चारपाई में पड़े हुए थे। फिर 1 बजे, रात के 1 बजे वो धीरे से उठते हैं और अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने की सिकड़ी निकालते हैं जिसमें एक चाबी होती है। उस चाबी को ले जाकर वो उसके कमरे में जाते हैं और संदूक को खोलते हैं। उस संदूक में वो 250 रुपए ज्यों के त्यों जैसे निकाले थे वैसे ही रख देते हैं और उसे बंद कर देते हैं, और फिर बिल्कुल दबे पांव चुपचाप आकर उस ताली को दोबारा उनकी पत्नी के गले में डाल देते हैं। इसके बाद वो खुश हो जाते हैं और फिर चैन की नींद सोते हैं और दूसरे दिन सुबह 8 बजे उठते हैं। मतलब बिलवासी जी ने वो 250 रुपए अपनी पत्नी की तिजोरी में से निकाले थे, संदूक में से चोरी किए थे, चुपचाप निकाले थे, बताया नहीं था उन्होंने अपनी पत्नी को कि वो पैसे ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लाला झाऊलाल को नहीं बताया कि वो पैसे कहाँ से लाए थे। क्योंकि अगर वो लाला झाऊलाल को ये बात बता देते और फिर किसी तरह ये बात उनके घर तक और उनकी पत्नी तक पहुंच जाती तो फिर उनके घर में तूफान आ जाता और फिर उन्हें कोई नहीं बचा पाता। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। लाला झाऊलाल को वो लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप ले लिया। इसका कारण ये था कि वो अपनी पत्नी के गुस्से से डरते थे, वे उससे किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहते थे, और उन्हें डर था कि अभी तो उन्हें लोटे में पानी मिला है, अगर उन्होंने ये नहीं पिया तो हो सकता है कि अगली बार उन्हें बाल्टी में खाना मिले। दूसरा प्रश्न, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? जब लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा छूटकर नीचे गिरा और उनके नीचे आंगन में पहुंचने से पहले ही एक भीड़ उनके आंगन में आ गई थी, और उस भीड़ का प्रधान जो था वो एक अंग्रेज था जो अपने एक हाथ से पैर सहला रहा था और उसी के हाथ में वो लोटा भी था। ये देखकर लाला झाऊलाल समझ गए कि उनके हाथ से जब लोटा छूटा था तो नीचे जाकर अवश्य ही इसी अंग्रेज के ऊपर गिरा होगा और इसे भिगाया है, और बाद में इसके पैर पे गिरकर इसके पैर को भी घायल किया है। उन्हें यह भी अनुमान हो गया कि ये अंग्रेज इतनी भारी भीड़ को लेकर अवश्य ही उससे लड़ने के लिए आया होगा। तीसरा प्रश्न, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। जब लाला झाऊलाल के आंगन में अंग्रेज और भीड़ घुस आई तो झाऊलाल परेशान हो गए कि अब अवश्य कोई ना कोई आफत आएगी। इतने में बिलवासी मिश्र आंगन में आते हैं और उन्होंने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया। बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए किया क्योंकि यदि वह भीड़ के बीच में लाला झाऊलाल को पहचान लेते तो उनकी वह योजना सफल नहीं हो पाती जिसे बनाकर वो लाला झाऊलाल के घर में आए थे। उनकी योजना ये थी कि वो सबसे पहले अंग्रेज का ध्यान पुलिस स्टेशन वाली बात से बटाना चाहते थे और इसके बाद वो किसी तरह उस लोटे को ऊंचे दामों पर बिकवाना चाहते थे, और वे इस योजना में सफल भी रहे क्योंकि उन्होंने अंग्रेज को ये विश्वास दिला दिया कि वो लाला झाऊलाल को नहीं पहचानते हैं। क्वेश्चन 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए, जब बिलवासी जी कहीं से भी रुपयों का प्रबंध नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से चोरी से 250 रुपए निकाल लिए और उन्होंने ये काम इतनी सफाई से किया कि उनकी पत्नी को पता भी नहीं चला। 5वां प्रश्न, आपके विचार से अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अंग्रेज पुरानी और ऐतिहासिक धरोहर की वस्तुओं को खरीदने के लिए भारत आया था। उसके पड़ोसी मेजर डगलस से इस विषय में उसकी बहस चलती रहती थी। पिछले साल मेजर डगलस ने भारत से 300 रुपए में जहांगीर अंडा खरीदा था। अब यह अंग्रेज इस अकबरी लोटे को ले जाकर मेजर डगलस को दिखाना चाहता था, जिससे वह ये प्रमाणित कर सके कि वो उससे कुछ कम नहीं है। वास्तव में विलवासी मिस्र ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि ये लोटा तो उस जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना था। यही नहीं, इस लोटे का मूल्य भी जहांगीरी अंडे से ज्यादा था। वह इस लोटे को दिखाकर मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहता था, इसीलिए उस अंग्रेज ने उस लोटे को खरीद लिया। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।